प्रेशर ऑफ थॉट्स को हम कुछ वर्ड्स की रिस्ट्रिक्शन लगा करके रोक नहीं सकते। हम मन को बोल दें, मन कुछ नहीं सोचना है, बस राम राम बोलना है। ये कमांड कैसी है? बिल्कुल ऐसी जैसे आप सब यहां बैठे हैं। आपको मैं एक रिस्ट्रिक्शन की कमांड दे दूं। देखो भाई और बहनों, जितनी देर यहां बैठे हो तो आप लोग वो पीछे जो स्लोगन लगा ना, उसको बिल्कुल मत देखना। ओ, कई तो अभी देखने लगे। हम बोल रहे हैं बिल्कुल मत देखना, तो क्या होगा? हो सकता है कल पूरा दिन आप आए, अभी भी आए, देखा ही ना हो, गया लगा। जैसे ही मैंने मना किया, ना बोलते ही क्या हो गया, ना बोलते ही। अब तो हो सकता है आप एटिकेट्स वाले हैं, मेरे सामने बैठे नहीं देखें, पर मैं उठ के चली गई तो क्या प्रॉब्लम है? दीदी ने क्यों मना किया कि इसको नहीं देखना है? कोई मैजिक है क्या? देखने से आंख खराब होती है क्या? इतना दिमाग चलेगा जो अपने आप बिल्कुल नहीं चला था। तो मन को रिस्ट्रिक्शंस जरा भी पसंद नहीं है। जहां रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, मन उसके अगेंस्ट जाता है, रिवोल्ट कर देता है। इसलिए मन को चैनलाइज करने की जरूरत है, रिस्ट्रिक्ट करने की नहीं। उसका हम डायरेक्शन बदला करते हैं, ना कि उसकी एनर्जी को ब्लॉक किया करते हैं। एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी, बहुत मजेदार है। एक भाई गया एक महात्मा जी के पास और कहता है, महात्मा जी आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत सिद्ध हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और इस मार्ग में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे अपना गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक, ओके, बनो शिष्य। उन्होंने गुरु मंत्र दिया और बोला, बेटा ज्यादा से ज्यादा जपना, तुमको सिद्धि होगी। अच्छा, तो भाई पूछने लगा, महात्मा जी मैं आपका नंबर वन चेला बन के दिखाना चाहता हूँ, कोई भी आप मेरे से परहेज कराना चाहें, कोई बात का नियम दिलाना चाहें, मैं सब करने को तैयार हूँ, कोई परहेज बता दीजिए। तो गुरु जी कहने लगे, नहीं बेटा इसमें कोई परहेज नहीं है। नहीं नहीं गुरु जी, कुछ भी बताइए। तो गुरु जी ने कहा, बेटा जब जब मंत्र जपना ना, तो बंदर को याद मत करना। कहता बस इतनी सी बात है, बंदर कौन सा मेरा मामा लगता है जो याद करूंगा, पहले भी कभी नहीं किया, अभी भी नहीं करूंगा, और कोई परहेज हो तो? महात्मा जी बोले, नहीं और कोई परहेज नहीं है, बस बंदर को याद बिल्कुल मत करना, अगर एक बार भी बंदर याद आया तो सारा मंत्र खराब हो जाने वाला है, डरा दिया। कहते ठीक है नहीं करूंगा। 7 दिन बाद आया महात्मा जी के पास, बहुत दुखी था। कहता महात्मा जी एक कृपा करो, अपना गुरु मंत्र वापस ले लो, मुझे आपका चेला नहीं बनना है। क्या हुआ, 7 दिन पहले बीजे पड़ा था, बना लो चेला और अब मंत्र ही वापस ले लो। कैसे लेना होता है मुझे नहीं पता, पर मुझे चेला नहीं बनना। हुआ क्या भाई? कहता जितना दुखी इन 7 दिनों में हुआ सारी उम्र कभी नहीं हुआ था। हुआ क्या? इतनी लगन से आया था, मैं बहुत मंत्र जाप शुरू किया, बस बहुत आगे जाके दिखाऊंगा, पर जब जब मंत्र को याद करने लगता हूँ बंदर याद आ जाता है, और आज 7वें दिन तो मेरी ये हालत है, मुझे सब कुछ भूल गया है, बस क्यों आई ये प्रॉब्लम? क्योंकि मन को रोक दिया गया था। तो जहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे वहां ये रिवोल्ट करेगा। इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। एक बार चंडीगढ़ में हमने बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स किया, 25 बच्चे थे उसमें, बस अच्छे इंटेलेक्चुअल बच्चे थे, बहुत बढ़िया स्कूल से थे। तो हमने कुछ पढ़ाते पढ़ाते सडनली उनको बोला, बच्चों 1 मिनट साइलेंस, जिसको मर्जी याद करो, बंदर को याद मत करना, 1 मिनट साइलेंस। हम उनको कुछ सिखाना चाहते थे। 1 मिनट बाद पूछा हमने, अच्छा बच्चों किस किस ने बंदर को याद नहीं किया? एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा था। तो बाकी 24 को बंदर ही याद आया। उसको हमने पूछा, अच्छा बच्चे तुमको बंदर बिल्कुल याद नहीं आया 1 मिनट में? कहते नहीं दीदी। का क्या किया आपने फिर 1 मिनट में? कहते जैसे ही आपने बोला ना बंदर को याद मत करना, मैं शेर को याद करने लग गया। क्या हुआ? रिप्लेसमेंट, चैनलाइज हो गया, चैनल बदला। तो मन को मारो मत, सुधारो। मेडिटेशन ये कहता है इसका दमन मत करो, बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। इसको सुमन करो, सुंदर मन बनाओ, इसको अच्छा काम दे दो। जब उस काम में मजा आएगा तो मन लग जाएगा। इसको ये मत कहो ये खराब है मत कर, इसको ये बोलो ये अच्छा है ये कर। एक बार एक शरारती बच्चे को उसके फादर ने वर्ल्ड मैप फाड़ के दे दिया टुकड़ा टुकड़ा करके, और उनको लगा शरारती ज्यादा विट्टी होते इसलिए शरारती होते। तो उसको कहा अब इसको जोड़ के दिखा, चैलेंज कर दिया, देखूं तुझे वर्ल्ड मैप आता है क्या? होता है, जोड़ लेगा, जोड़ दूंगा। टुकड़ा टुकड़ा सारा ऐसे और बिखेर दिया सब, और उसको लगा अब 1-2 घंटे लगा रहेगा, तंग नहीं करेगा। बच्चा 2 मिनट में पूरा वर्ल्ड मैप जोड़ के आ गया। अरे ये कैसे किया तुमने? कहते पापा इसके पीछे एक आदमी का फिगर था, मैंने देखा और मैं उसको जोड़ा, ये जुड़ गया। रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया ना। तो ये रिप्लेसमेंट्स होते हैं। इसलिए बुरे को बुरा भी मत कहो, तुम इस बात में खराब हो खराब हो। जिन लोगों को हम सुधारने का जोर लगाते हैं, उनको हम बार बार कौन से रिमाइंडर्स देते हैं? तुम ये गलती करते हो सुधर जाओ, नहीं तो। और वो सुधर जाते हैं। ऐसे डांट कर टोक के बार बार उनको पनिश करके हमने कितने लोगों को अब तक सुधार दिया? है गिनती किसी के पास? अपने ही बच्चे, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को बहुत पॉइंट आउट करते, ब्लेम करते, तुम यहां गलत हो ठीक हो जाओ, यहां गलत हो ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ, रिजल्ट कई बार माइनस में है, कई बार जीरो, और कई बार माइनस में जाता है और ये जिद्दी हो जाते हैं। तो इसके बजाय हम उनको ब्लेम करने के बजाय, चलो एक बात में वो खराब है, हैं? हम उनकी जहां जहां अच्छी बातें है उसको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें, तो खराब वाली अपने आप सबलाइम हो जाती है, अपने आप मर्ज होने लगती। आजमा के देखना, बहुत कामयाब तरीका बता रही हूं। घरों में रिश्ते एकदम अच्छे हो जाएंगे, लोग आपकी बात मानने लगेंगे। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम उनकी वही बातें पॉइंट आउट करके प्रिक करते रहते, तुमने गलत किया गलत किया गलत किया, नहीं नहीं तुम यहाँ यहाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। फिर कभी चुपके से अलग अकेले में बोलो, बहुत अच्छा हो अगर आप ये वाली बात ऐसे नहीं ऐसे कर लिया करो तो, रिक्वेस्ट करके देखो, ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। मेडिटेशन में भी हमको मन का ये मनोविज्ञान समझते हुए, केवल शब्दों को दोहराते हुए भगवान को याद नहीं करना, केवल माला फेरते हुए, कहीं केवल आंख को टिकाते हुए, केवल मुंह से आरती पूजा करते हुए नहीं करना, लेकिन अंतर मन को साथ में कमांड्स देख करके साथ में यूज करना है। कबीर दास जी ने भी लिखा है, माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी रे, मन का मण का फेर, सुना होगा सबने। तो हाथ का मण का तो सारी उम्र फेरते रहे, अब इस मन के मण के फेरने की जरूरत है। मण के फेरना मीन्स मन के मण के, टू चेंज योर एटीट्यूड्स, अपने थॉट को नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में टर्न देना है। ये टर्न करना है, ना कि ब्लॉक करना है। ब्लॉक करेंगे तो ये तंग करेगा, टर्न करेंगे तो ये बहुत स्पीड अप होकर के आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए जब जब मेडिटेशन करें, मन से दिल से, मन है थॉट सिस्टम, दिल है इमोशंस, तो मन से भी और इमोशन से भी भगवान से प्यार भरी बातें किया करें, ना कि केवल उनको जपा करें। ये जपना अगर आप अपने रिश्तेदारों के लिए भी यूज कर लो ना, मन रिश्तेदारों को भी तो याद करता ना, तो जब याद करता है तो क्या ये मन उनको जपता है या उनसे बातें करता है? क्या करता है? बातें करता है। किसी को बेटा याद आए, माँ याद आए, फादर याद आए, दोस्त याद आए, तो मन सोचेगा हाँ भाई तुम कहाँ गया था, उस दिन तुमने ये बोला था, अब मिलोगे ना तो फिर ये बात बोलेंगे, कुछ बातें बोल रहा। अगर इसी मन को हम अपने बेटे की याद भी वैसे ही करने को बोल दे जैसे भगवान को याद करते हैं, तो शायद मन रिश्तेदारों को भी याद न कर पाए। एक माँ अपने बेटे को कैसे याद करती है? समझो वो बेटे की फोटो रख ले, माला पकड़ ले और उसका नाम जपना शुरू कर दे, नेटू 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 नेटू, तो नेटू याद आएगा या वो भी भूल जाएगा? सोच के देखो, वो भी भूलेगा, क्योंकि मन अपने फ्लो में फिर जाना चाहेगा, किसी और फ्लो में। बड़ा तंग करके रखा है नेटू ने। चलो आज इसको हम पनिश करते हैं, खाना नहीं देंगे। मैं तो अपने फ्रेंड के यहाँ जाना, मैं तो किट्टी में जाना, वहां जाएंगे डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपनी डाइवर्शन ढूंढ लेगा, वो ब्लॉक नहीं होना चाहता है अपना मन। तो इसलिए मन की नेचर को समझें कि मन रिश्ते जोड़ा करता है, मन बातें किया करता है, और सारी उम्र मन ये वाले काम करता आया है। हमने सिर्फ इसमें भगवान को एक ऐड करना है। जैसे देखो मन की एक और नेचर बताती हूँ। एक नेचर है सेंटेंसेस क्रिएट करना, थॉट को ब्लॉक नहीं करना। दूसरी नेचर है रिश्ता जोड़ना, बदलना और ऐड करना। एक छोटा बच्चा है, इस उदाहरण को ध्यान से मन के मनोविज्ञान से समझेंगे। एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, माँ की गोदी में खुश है, और आंटी आई कोई और उसने कहा बेटा मेरे पास आओ, नहीं आ रहा था, जबरदस्ती उठाया, गोदी लिया, माँ कहीं चली गई। अब वो बच्चा जोर जोर रोने लगा, जोर जोर, माँ की गोदी में खुश था, और जब जोर जोर रोया माँ वापिस आने लगी। वापिस आता देखा जैसे ही माँ को, चुप हो गया। माँ ने वापिस गोदी लिया तो खेलने लगा। 6 महीने का बच्चा बोलना नहीं जानता है, लेकिन जब माँ नहीं दिख रही थी क्यों रो रहा था? माँ को याद कर रहा था। इतने छोटे बच्चे को भी माँ को याद करना आता है कि नहीं? बोलना नहीं आता, याद करना आता है। तो याद करना मन का स्वभाव है। पहले बोला बातें करना स्वभाव है, अब याद करना भी स्वभाव है। और वही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अपने जैसे बच्चे और दिखते हैं, उनके साथ खेलता है, मजा आ रहा है। अब मम्मी बुला रही है, बेटा आओ दूध पियो, क्या बोलता है? सबको साइकोलॉजी मालूम है, बोलता है नहीं ठहरो थोड़ी देर बाद आता हूँ। मम्मा माँ से रिश्ता टूटा है क्या? टूटा नहीं है, एक नया ऐड हुआ है। खेल के थकेगा तो फिर मम्मी चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं चाहिए, रिश्ता ऐड हो गया। वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ने गया स्कूल, पढ़ के वापिस आया, होमवर्क कर रहा है, याद आ रहा है मैम ने ये बोला था, बोर्ड पे ये बनाया था, मैं भी बनाता हूँ, और मम्मा कल ना हमको दूसरी यूनिफॉर्म पहन के जानी है, टीचर ने बोला, लगातार टीचर 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 याद कर रहा उसको, कौन से टीचर ने सिखाया था तुम मुझे याद करना घर जाके। नेचुरल नेचर ऑफ माइंड, पढ़ के आया अब टीचर की याद आती है। वही और बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, औरों की याद कम होके वाइफ की याद आने लगती है। अब बच्चा आ जाए तो वाइफ की याद कम होके बच्चे की याद ज्यादा आने लगती है। एक बच्चा आया था, दो आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा, पांचवा, दसवा, ग्यारहवा आ जाए। आजकल तो नहीं आते हैं, हमको मालूम है, पहले तो आते थे। समझो कोई को 11 बच्चे है, 11वें बच्चे को याद कर पाएगा कि नहीं? नहीं, मन में जगह नहीं बचेगी। अपना 11वां बच्चा रोड पे खड़ा है, पहचान सकेगा कि नहीं? पहचान लेगा। 11 क्या 20 भी हो, 100 भी हो, मन में ट्रेमेंडस एनर्जी है, वो सब रिकॉर्ड करता रहता है, रिश्ते ऐड करता है, बीच बीच में डिलीट भी करता है, लेकिन ऐड भी करता है। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मन में बहुत लोगों को याद करने की ताकत है, तो हमने भगवान को याद करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, भगवान को एक रिश्तेदार की तरह अपने जीवन में ऐड कर लेना। ये नहीं सोचना है कि सब कुछ छोड़ूं फिर भगवान को याद करूं, नहीं। किसी किसी को लगता है गृहस्थी के काम खत्म हो जाए फिर आराम से संन्यास लेंगे, फिर भगवान का नाम लेंगे, फिर हमने और क्या करना, हम 58 में रिटायर हो जाएंगे, बस अभी थोड़ा सरकार का काम कर लें फिर तो हम यहीं आ जाएंगे, राम राम ही जपेंगे सारी उम्र, तब होने वाला नहीं है। हम जहां हैं, जब हैं, जैसे हैं, एक रिश्तेदार उसको ऐड करना है बस। जैसे ही ऐड करेंगे उसको भी हम वैसे ही याद कर लेंगे जैसे औरों को याद किया करते हैं। इसलिए परमात्मा को याद करने के लिए हमें कोई बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं है, ना मूर्ति, ना माला, ना मंत्र, ना ज्योति, ना आरती। याद के लिए तो केवल मन की नेचर को ठीक प्रयोग करना। हाँ, ये साधन थोड़ा थोड़ा मदद किया करते हैं, यहाँ भी फोटो लगी है, प्रोजेक्टर यूज हो रहा है, हम लोग भी अगरबत्ती जगाया करते हैं, भजन चलाया करते हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ मसाला लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन याद तो मन और बुद्धि की शक्ति से ही होता है, उसके बिना नहीं होता। तो इसलिए आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं, उन स्टेप्स पर चलकर हम अपने माइंड को ठीक कंसंट्रेट कर सकते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज टू बी सोल कॉन्शियस, आत्मदर्शन करो। मेडिटेशन का ये पहला स्टेप है बी सोल कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि परमात्मा ज्योति है, परमात्मा का रिश्तेदार ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये शरीर को शरीर के रिश्तेदार मिले हैं, तो उनको याद कर सकते हैं, परंतु आत्मा के रिश्तेदार को याद करने के लिए पहला कदम है अपने को आत्मा महसूस करना, जिसको हम आत्मा दर्शन भी कहते हैं, टू बी सोल कॉन्शियस भी कहते हैं। अब आत्मा दर्शन क्या होता है? अंतर की आंख से आत्मा को देखना। अंतर की आंख है बुद्धि, आत्मा को इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। यहां देखने का जोर लगाएं, आंख बंद करके तो दिखती है, आंख बंद करके जोर लगाओ यहां स्टार दिखे, दिखेगा? बंद आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। दूसरे को भी ऐसे देखने चाहे तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन आत्मा को बुद्धि के नेत्र से देखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम। विजडम की आंख इन दो आंखों से कई हजार गुना ज्यादा देखती है। बहुत सारी चीजें जिंदगी में हैं जिनको आपने इन आंखों से नहीं देखा है, फिर भी आपका मन उसको देखता रहता है, बुद्धि उसकी पिक्चर बनाती रहती है। आपका फ्यूचर इन आंखों से आपने देखा है? देखा है? इन आंखों से फ्यूचर आएगा तो देखेंगे ना, लेकिन विजडम आपके फ्यूचर को दिखाती रहती, क्रिएट करती रहती। कभी वो दिखा के डराती है, कभी वो दिखा के बहुत खुशी देती है, वैरायटी रूप होते है। तो विजडम कैसे दिखती है समझो। आप सब तो यहाँ बैठे हैं, मैं कहूँ आपको, आप साथ साथ जर्नी करना हो वाली, समझो आप अपने घर में हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। सडनली डोर बेल हुई, आपने एकदम उठने की कोशिश की, कोई तार थी नीचे, पैर में उलझ गई, चाय का प्याला गिर गया, आपके कपड़ों पर भी गिरा, टूट गया। आप ठीक ठाक थोड़ा करके बाहर गए, कुछ छोटी सी बात थी, पेपर वाला था। आप वापिस आए, आपने आकर के फ्रिज खोला, फ्रिज में आपने देखा इतना बड़ा संतरा। कितना बड़ा? कितना बड़ा? इतना बड़ा दिख रहा, इतना बड़ा ऑरेंज। आपने उसको छीला, अंदर से इतनी बड़ी बड़ी फाड़ी, उसके पीसेस निकले, आपने खाया तो मैंगो का टेस्ट आ रहा था। अब ये सारी बात मैंने बोली, आई थिंक एक डेढ़ मिनट बोली होंगी, लेकिन आप सब लोग कहाँ पहुंच गए थे? घर पहुंच गए थे? देखा ड्राइंग रूम? देखा चाय का प्याला? दिखी चाय गिरती कपड़ों पर? डोरबेल सुनाई भी दी? आपको दिखा पेपर वाला? अपना फ्रिज, उसके अंदर बड़ा ऑरेंज जो होता नहीं है, और उसमें से मैंगो टेस्ट वाली फाड़ी संतरे की टेस्ट आया? सब कुछ आया, ज्यादातर आया। तो ये सब कुछ किसने देखा? इन दो आंखों ने तो नहीं देखा। मन और बुद्धि, ये दो आंखें हैं जो दिखा देती है सब कुछ। तो इन आंखों से हम आत्मदर्शन करते हैं, परमात्म दर्शन करते हैं। जैसे देखो, आप सब समझो कल यहाँ आए थे तो आप सबको तिलक दिया गया था, समझो आज भी तिलक दिया यहाँ, और एक येलो बिंदी आपको लगा दी गई। आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको बोलूं, सोचो आप सबके माथे पर एक येलो तिलक लगाए। कैन यू विजुलाइज? सभी को विजुलाइज हो रहा? येलो तिलक, सोचो। ओहो, येलो नहीं, व्हाइट। यू कैन विजुलाइज? अब ये व्हाइट तिलक बड़ा था ना, छोटा हो गया एक डॉट जितना, और उसमें से लाइट निकल रही है. यू कैन विजुअलाइज डॉट व्हाइट और उसमें से लाइट निकल रही है. इसको कहेंगे आत्मा दर्शन, बुद्धि की आंख से देखना. मेडिटेशन में हम इस बात के लिए मना करते हैं कि आंख बंद करके कुछ देखने का इंतजार मत करो. या तो दिखेगा नहीं, अगर दिख गया तो वो कोई आपकी मेडिटेशन की उपलब्धि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि टेम्परेरी है. अभी दिखा अभी गया, मेडिटेशन का पर्पस है ऑल द टाइम अपने आप को सोल फील करना, ऑल द टाइम आत्मदर्शन करना. तो उसके लिए आपकी बुद्धि की आंख ऐसी विजनरी होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर? तो पहला स्टेप है राजयोग का आत्मदर्शन, टू बी सोल कॉन्शियस, क्योंकि आत्मा ने परमात्मा से मिलन मनाना है और उनसे कनेक्ट होके पावर लेनी है. तो कनेक्शन का एक लॉ होता है. समझो हमको पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के पावर लेनी है, तो उसके लिए क्या लॉ रहता है कि दो तरफ से तारे आती है, वायर्स आती है, और दोनों तरफ की तारों के ऊपर वो रबर कोटिंग होती है, और दोनों तरफ से वो रबर कोटिंग उतार कर मेटल वायर कनेक्ट करनी होती है. समझो एक तरफ की तार से रबर उतार दिया, दूसरे वाला नहीं उतारा और गांठ बढ़िया वाली लगा दी, करंट मिलेगा? आप पावर हाउस वालों को ब्लेम कर दो, रिपोर्ट कर दो, केस कर दो, जो मर्जी कर दो, आपको पावर तभी मिलेगी जब दोनों तरफ की तारों से रबर उतार दिया जाएगा. उसके बिना पावर नहीं मिल सकती है. ऐसे ही परमात्मा को जब जब याद करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस की रबर उतारनी है. उस पर तो है नहीं, हम पर चढ़ी है. तो इसको उतारने के लिए जब भी हम मेडिटेट करते हैं, आपने कल भी ऑब्जर्व किया होगा, आज सुबह भी थोड़ी प्रैक्टिस कराई, उसमें भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम पहले सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि ये बॉडी की फीलिंग्स, इस बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है, पोजीशन, रिलेशन, ये उतरे और ये फीलिंग आए मैं एक आत्मा हूँ, अमर हूँ, चैतन्य हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ. फिर कनेक्ट होंगे परमात्मा से तो होना आसान हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप क्लियर, आत्मदर्शन. दूसरा कदम राजयोग का परमात्मा दर्शन, टू बी गॉड कॉन्शियस. परमात्मा का परिचय ले लेने के बावजूद भी बुद्धि के नेत्र से उनको देखना, उसके बिना एकाग्रता नहीं बनती है. जैसे हम राम राम बोलते थे माला पर, राम ठीक था, माला ठीक थी, कुछ गलत नहीं है. हम मिस क्या कर रहे थे, बुद्धि के नेत्र से राम जी को नहीं देख रहे थे. उनको देखे बिना, विजुअलाइज किए बिना केवल शब्द दोहरा रहे थे. तो बुद्धि कुछ न कुछ पिक्चराइज करती रहती, वो फोटोग्राफर है, फोटो खींचती रहेगी. हमने मुंह से बोला राम, हाथ से घुमाया मन का, और बुद्धि ने फोटो खींच दी ऑफिस की, तो मन उसके पीछे जाएगा. माइंड फॉलोज योर इंटेलेक्ट. जो भी वो पिक्चर बनाती है, उन पिक्चर्स को माइंड फॉलो किया करता है. इसलिए दूसरा कदम परमात्मा दर्शन, जिसमें हम अपने को चिंतन दिया करते हैं. हे आत्मा, तुम्हारा पिता कौन? परमात्मा वो कहाँ रहता है? दूर परम धाम में. वो कैसा है? वो लाल आसमान है, वहाँ शांति है, वहाँ पवित्रता है, वहाँ आत्माएं निवास करती है. उनको हम पिक्चराइज कर रहे हैं. आत्माएं कैसी है, सब ज्योतियां इकट्ठी एक झाड़ की तरह वहां चमक रही है, उनके ऊपर परम ज्योति बिंदु, उस बिंदु का प्रकाश बहुत तेज चारों ओर फैल रहा। तो ऐसे शब्द यूज करते हैं जिसमें विजन बने, जैसे ये परम धाम दिखाया तो इसमें ऐसे ज्योतियां वहां निवास करती है। नहीं नहीं कल तो चल रहा था शायद, ओके। ये परम ज्योति परमात्मा, ये आत्माएं इस तरह एक डिवाइन शेप में वहां जाकर के निवास करती है। तो हम बुद्धि से फील करते हैं एक जर्नी कि ये ग्लोब है, ग्लोब से ऊपर सूरज चांद सितारे प्लेनेटोरियम, बीच में एक सटल वर्ल्ड, वो आपको बाद में समझाया जाता जो आपके अगले लेसन आएंगे। आप मन बुद्धि से सिर्फ फील करते हैं, आप जा रहे हैं डायरेक्ट ऊपर और यहाँ इन सोल्स के बीच में जाके बैठते हैं। भले आप ये भी फील कर सकते हैं कि ये सिर्फ एक रेड स्काई है, गोल्डन रेड, भले कोई भी और सोल नहीं फील करे, अपने को फील करे और परमात्मा को ज्योति रूप में फील करे। या फिर आज सुबह जैसे प्रैक्टिस किया कि मैं आत्मा यहाँ परमात्मा वहाँ और उनका प्रकाश ऊपर से नीचे आ रहा है, इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, जैसा भी विजुअलाइज करे ठीक है। मेन बात है आत्मा दर्शन होना चाहिए बुद्धि को और परमात्मा दर्शन होना चाहिए। थर्ड स्टेप ऑफ मेडिटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज रिलेशनशिप। जब भी भगवान को याद करो, एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ करके याद करो, क्योंकि रिश्तेदारों की याद अपने आप आया करती है, गैरों की याद बड़ी मुश्किल होती है, और परमात्मा तो हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्तेदार है ही है। उनके लिए तो हम अक्सर प्रेयर गाते रहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो त्वमेव सर्व मम देव देव, ऐसा कहकर उनकी महिमा गाते हैं। अब इसमें एक सावधानी है, बाकी जो रिश्ता चाहो आप जोड़ो उनके साथ, परंतु कोई बहुत घटिया रिश्ता ना जोड़ लेना। वो कौन सा होता है? वो होता है मैं नौकर दास और आप मालिक, बहुत बड़ी हस्ती, या फिर मैं भिखारी आप बहुत रिच, जैसे भरपूर सब वाले। भगवान कहते आप सब मेरी संतान हो, कभी भी मेरे पास नौकर या भिखारी बनकर नहीं आना। क्यों? सर्वेंट्स की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे शरीर नहीं, मुझे कोई काम आप लोगों से ऐसा कराना नहीं है। और भिखारी मुझे पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? क्योंकि भिखारी कभी भी राजा नहीं बन सकता, कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट होता है ऑल द टाइम, डिपेंडेंट होके, और फिर देने वाला भिखारी को हमेशा बहुत कम देता है। समझो एक सेठ है, बहुत रिच, दयालु, दानी, उसके सामने एक बेगर आता है, बहुत चिल्लाता है, भूखा हूं कुछ दे दो। सेठ दयालु है, क्या देगा उस भिखारी को? सारी प्रॉपर्टी? क्या देगा? अपनी कमाई का सबसे छोटा हिस्सा। जो भी देगा उसकी कमाई का तो सबसे छोटा हिस्सा होगा भिखारी के नाम का। समझो उसका सर्वेंट आता है, बहुत काम करता है, जूता पॉलिश, क्लीनिंग, खाना बनाता है, सेठ के बहुत बहुत काम कर देता है, सेठ खुश है उस पर, कुछ देना चाहता है, क्या देगा? जो देगा एक सैलरी होगी और इनाम भी दे देगा, एक पक्का मकान बनवा दे, उसकी बेटी की शादी करा दे, पर सेठ की अपनी प्रॉपर्टी का स्मॉलेस्ट पार्ट है। और अब आए उसके पास बेटा, बेटा भीख नहीं मांग रहा है, बेटा उसके जूते पॉलिश नहीं कर रहा है, सेठ क्या देगा बिन मांगे, बिन मांगे सारी प्रॉपर्टी, तिजोरी की चाबी दे देगा और सारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उसके नाम करा देगा। फिर भी कहेगा बेटा कुछ और चाहिए तो बता, तेरे लिए ही तो जी रहा हूं। तो परमात्मा भी कहते है आप लोग आके भीख मांगते है, हे भगवान थोड़ी सी शांति दो, मैं तो दयालु कृपालु भेज दूंगा ऊपर से शांति, परंतु आप भिखारी होके मांग रहे हो तो भिखारी माना कैपेबल नहीं है लेने के, यहाँ ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध की आग जल रही है, मैंने जो शांति भेजी ना इवेपोरेट हो जाएगी। तो बेटा बनके मुझे याद करने के लिए आपको ये नहीं कहना पड़ेगा हे भगवान थोड़ी सी शांति दे दो, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में आना पड़ेगा, मैं एक शांत आत्मा हूँ, शांति सागर परमात्मा की संतान हूँ, उनकी शांति मेरा इनहेरिटेंस है, वो दे रहे हैं मैं ले रही हूँ आत्मा, तो सीधा अंदर जाएगी। और अगर मैं बोलूँ मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता, मन राजी होता ही नहीं है, संतुष्ट होता ही नहीं है, अंदर आग लगी रहती है, हे भगवान आपको भी कितनी बार बोला थोड़ी शांति दे दो, ऐसे मांगने से आती है? कई बार मांगा होगा, नहीं, मांगने के बजाय योग्य बनो। जैसे ठंडे स्थानों पर चले जाने से मांगना नहीं पड़ता है, बर्फ तो ठंडक दे, गर्म इलाके में सनलाइट में जाने से मांगना नहीं पड़ता है, वो सनलाइट दे, हीट दे, अपने आप आती है। ऐसे ही जब हम मन बुद्धि से परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट में आते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, परमात्मा मेरे पिता है, मेरे दोस्त है, मेरे साजन है, मेरे गुरु है, तो मुझे दे रहे हैं मैं ले रही हूँ, उसको विजुअलाइज करके उसकी रिसीविंग फील करते हैं तो वो अंदर भरने लगता है। तो थर्ड स्टेप है परमात्मा से अच्छा सा रिश्ता जोड़ करके उनसे प्राप्तियां करना। फोर्थ स्टेप कन्वर्सेशन, भगवान को जब भी याद करो, केवल जपो नहीं, केवल रटो नहीं, लेकिन उनके साथ दिल की बातें किया करो, क्योंकि जहां दिल की बातें होती हैं वहां क्या होता है, जरा गहरा सोच के बताओ। लव, राइट, लव गहरा रिश्ता, रिजल्ट राइट, उसमें क्या होता है, जैसे वो है वैसे आप बनने लगते हैं, जिसके साथ आप दिल की प्यार भरी बातें किया करते हैं आप उसकी पर्सनैलिटी रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का दिल का प्यार हो जाए एक चोर से, बाहर से वो अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसका दिल उस चोर से प्यार भरी बातें करता है, तो कैसे वाली करता होगा, कितना अच्छा चोर है, कैसा बढ़िया पॉकेट मारता है, कैसे दूसरों को बुद्धू बनाता, यही सोचेंगे ना, प्यार भरी बातें कैसे करेंगे चोर से, ऐसे वाली। अब ऐसी ऐसी बातें, अच्छा तूने माल चुराया कहां से, ऐसे ऐसे खुला था, फिर ऐसे बातें कर रहा है, चलो घूमने चले, चलो खाने चले, ऐसे वाले से प्यार है, तो उसके कर्म में चोरी आएगी या नहीं, लाख चाहे बच नहीं सकता, उसके कर्म में सच्चाई ईमानदारी कभी नहीं आ सकती, और ऊपर से शायद किसी को मालूम भी ना हो कि वो चोर इसका दोस्त है, दिल उससे बातें करता है। हो सकता है आपका दिल किसी ग्रेट पर्सनालिटी से जुड़ जाए उससे ऐसी अटैचमेंट हो जो मन बार बार याद करे, उस ग्रेट पर्सनैलिटी को फादर बना ले, दोस्त बना ले, भाई बना ले, और बार बार मिले, बार बार दिल से बात करे, तो वो ग्रेटनेस आपके कर्मों में दिखाई पड़ेगी। वैसी पंक्चुअलिटी, वैसी फॉरगिवनेस, वैसी दान देने की वृत्ति, वैसा प्रेम भाव आपके अंदर पूरा नहीं तो आधा जरूर आ जाएगा। संग का रंग लगता है पर संग होता है दिल का, दिल से प्यार भरी बातों का। तो इसलिए जब हम मन से परमात्मा से प्यार भरी बातें किया करते हैं तो हम गॉडलीनेस रिसीव करते हैं, गॉडली पावर्स रिसीव करते हैं। शायद आपके अगले सेशंस में ये आएगा कि गॉड से हम प्रैक्टिकल पावर्स कैसे रिसीव करते हैं, जिससे हमारे सारे लाइफस्टाइल में बहुत एम्पावरमेंट आ जाती है। तो ये तीन स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स हमने समझे मेडिटेशन के, रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप सोल कॉन्शियस, सेकंड स्टेप सभी बोलेंगे तो पक्का हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप सोल कॉन्शियस, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप रिलेशनशिप, भगवान को रिश्ते से याद करो, और फोर्थ स्टेप कन्वर्सेशन। तो इन फोर स्टेप्स से हम परमात्मा को मन से याद किया करते हैं, उनसे दिल की बातें किया करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत मीनिंगफुल है सारे के साथ। एक गांव का बच्चा, उसके पास भेड़ बकरी वगैरह थे, वो चराने के लिए जंगल में ले जाता था। और जंगल में एक दिन बैठा और सोचने लगा, बहुत बोर हो रहा हूँ, ये तो घास खा रहे हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। तो उसको ख्याल आया, भगवान ऊपर बैठा है तो हम भी उसके भेड़ बकरी है, उसने हमें चरने के लिए दुनिया में भेज दिया है, जैसे मैंने अपने पशुओं को यहाँ चरने को छोड़ दिया है और मैं खाली हो गया हूँ, भगवान भी ऊपर खाली हो गया होगा, वो भी बोर हो रहा होगा। तो उसके दिल से एक आवाज निकली, ओ भगवान जी, तुम ऊपर खाली, मैं नीचे खाली, तुम भी खाली, मैं भी खाली, चलो दोस्ती करें, आओ बातें करें। ऐसे करके उसको मजा आने लगा। डेली वो भेड़ बकरी को चरने छोड़ता, पेड़ के नीचे बैठता और ये बातें शुरू, और बोलता था मुंह से बातें बातें बातें। एक दिन एक पंडित जी वहां से क्रॉस कर रहे थे, उनको ऐसे कुछ विस्परिंग वॉइस सुनाई दी, मुड़ के देखा तो पेड़ के नीचे एक बच्चा बैठा था। उसके नजदीक चले गए, ध्यान दिया, आवाज कहां से आ रही है, उससे पूछते, तुम क्या कर रहा है यहां पर, दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया। तो बच्चा झेप गया सडनली, किसी को सामने देख करके एकदम एजिटेट करने लगा। सडनली उसके मुंह से निकल, ओ पंडित जी कुछ नहीं, जरा अपने दोस्त से बातें कर रहा था। दोस्त से बातें कर रहा था, कहां है तेरा दोस्त? पंडित जी वही अपना ऊपर वाला। उसको समझ नहीं आया क्या बताऊं, ऊपर वाला, पंडित जी ने पेड़ पे देखा कोई बैठा होगा, ऊपर वाला, कहते कहां है ऊपर वाला, कहते वही अपना भगवान। भगवान तेरा दोस्त, तुम भगवान से बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहा था? बच्चे ने वही भोली बातें बता दी, मैं बोल रहा था भगवान जी तुम ऊपर खाली, मैं नीचे खाली, आओ दोस्ती करें, चलो बातें करें, चलो गपशप करें, चलो इस भेड़ को चराएं, चलो ये करें, ऐसे मजा आ रहा था मुझे। पंडित जी को गुस्सा आ गया कि तुम भगवान से ऐसी बातें कर रहा था, इतनी घटिया, भगवान कितनी बड़ी हस्ती है मालूम है तुझे, और तुमको श्राप दे देंगे ऐसी बेकार सी बातें भगवान के साथ। बच्चा डर गया, अच्छा पंडित जी ऐसे नहीं बोलना होता है, तो क्या करना होता है आप बता दीजिए, मेरे को भगवान जी से मार पड़ेगी क्या? नहीं नहीं आप बचा लीजिए। पंडित जी वहीं बैठ गए। कहते मैं बताता हूं तुझे कैसे मंत्र जपने होते, उसको भगवान की याद कहते। अब पंडित जी कुछ संस्कृत के श्लोक बोलने लगे, बच्चे को समझ नहीं आए। पंडित जी पूरा दिन वहीं बैठे रहे, ऐसे बोल ऐसे बोल ऐसे बोल, बच्चे को एक मंत्र याद हो गया। अच्छा तुम दिन में 100 बार ये मंत्र जपना, ठीक है? ठीक है पंडित जी, जरूर जपूंगा। ठीक है, उसको सिखाया और पंडित जी चल पड़े। चलते चलते बड़े खुश बोलने लगे मन ही मन, ओ भगवान जी देखा, आज मैंने आपका एक भक्त और बढ़ा दिया है। भगवान जी की आवाज आ गई, ओ पंडित जी तुमने मेरा एक भक्त नहीं बढ़ाया, मुझसे मेरा प्यारा सा दोस्त छीन लिया है। वो प्यार भरी बातें किया करता था मुझसे, मैं भी उसमें खुश हो लिया करता था, और अब वो केवल कुछ शब्दों के जाल में उलझ कर रह गया है, मुझसे बातें करना भूल गया है। ये सारा कुछ सुनते आप सबको ख्याल आ रहा होगा, मंत्र खराब होता है क्या, नहीं जपना चाहिए क्या, माला नहीं फेरनी चाहिए क्या, हमको तो हमारे उन गुरु जी ने दिया था मंत्र, हम तो सारी उम्र से यही करते आए हैं, अब हमें छोड़ना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ना माला बुरी ना मंत्र बुरा, ना जिन महापुरुषों ने आपको ये गाइड किया ना वो बुरा, उनके अपने लाभ है, रेसिटेशन के अपने लाभ है, वायुमंडल पे, इको के बॉडी पर, उसकी भी कई तरह की साइंस है, आप लोगों को भी कुछ 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 उसके अच्छे अनुभव कभी न कभी हुए होंगे। लेकिन एक एडिशन और कर दो तो आप भी खुश, आपके संत महापुरुष भी खुश होंगे उस बात से, और वो है मंत्र के साथ उस मंत्र का मीनिंग समझते हुए उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ, उसको आप सेंटेंसेस में साथ में यूज करो, बदलो। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं इस मेडिटेशन को सीखने से पहले एक मंत्र प्रयोग करती थी, हमको एक गुरुजी ने दिया था, वो बहुत अच्छे गुरुजी थे, और मंत्र था ओम नमः शिवाय। मुझे उसमें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए थे और मैं उसका जाप किया करती थी। जैसे ही जिन दीदी जी ने मुझे वो मेडिटेशन सिखाया, उन्होंने बोला सिर्फ जपना नहीं होता है, भगवान से बातें करनी होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी हमको तो ऐसा मंत्र मिला है और मैं जपती हूँ। उन्होंने कहा डोंट वरी, कोई बात नहीं, मंत्र प्रयोग भले करो लेकिन उसका मीनिंग ठीक समझो। तो उन्होंने मुझे उसका मीनिंग समझाया, ओम नमः शिवाय। ओम मीन्स मैं आत्मा, नमः नमस्कार करती हूँ, शिवाय शिव परमात्मा को। तो उन्होंने बोला नमस्ते करना तो अच्छा है, टिकट करो, जरूर करो, परंतु व्यवहारिक रूप से करो, प्रैक्टिकल नमस्ते करना, जैसे अपने फिजिकल फादर को करती हो वैसे वाला नमस्ते करना। हमें कुछ आधा अधूरा समझ आया, पूरा नहीं आया था, घर चली गई। घर जाकर के प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई और मन में एक बात बज रही थी, प्रैक्टिकल नमस्ते। तो मैं सोचने लगी ये प्रैक्टिकल नमस्ते क्या होती है, मैं रिलेट करने लगी अपने फिजिकल फादर से। मैं अपने फिजिकल फादर को नमस्ते करती हूँ, डैडी जी नमस्ते, पर कब करती हूँ, सारा दिन तो नहीं करती रहती हूँ। जब वो कहीं बाहर से आते हैं या गुड मॉर्निंग गुड नाइट के टाइम कुछ हम बोलते वैसा। तो मैं सोचने लगी उनको कैसे नमस्ते करती हूँ। समझो फादर कई बार गए हुए थे, आए डोरबेल की, मैं गई सामने डोर ओपन किया और उनको देखते ही बोलती हूँ डैडी जी नमस्ते। अब डैडी सूटकेस उठा के खड़े है और मैंने बोलना शुरू कर दिया डैडी जी नमस्ते, डैडी जी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, डैडी जी नमस्ते। डैडी जी क्या बोलेंगे? ठीक है। क्या हुआ है? हो गया ना नमस्ते। चलो अंदर आने दो, चाय वाय पिलाओ, कुछ पानी लाओ। तो मुझे लगा ये भगवान के साथ मैं क्या कर रही थी, वो भी तो डैडी है ना। चलो वो तो डैडी आते हैं, उनको देखा होता है, मिलते हैं तो हम बोलते हैं। तो उस वाले डैडी के लिए बोला था दीदी ने कि मन की आंख से देखना है, कल्पना की आंख से देखना है, इमेजिनरी सीन बनाओ। मैं कहा आज हम बनाते हैं। मैं कहा मैंने सोचा था डैडी बॉम्बे गए हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आ रहे हैं, ऑटो किया, घर में आ गए, ये आए, तो मन से मैंने बोल दिया नमस्ते। ऐसे ही आज उस डैडी को बोलती हूँ। मैं मन में बोलने लगी ओ शिव बाबा आप भी तो मेरे डैडी हो, ऊपर बैठे क्या कर रहे हो, आ जाओ ना नीचे। बिल्कुल ऐसे बोला, ये मेरा उस दिन का एक्सपीरियंस है, आ जाओ ना नीचे। मेरे अंदर में एक दृश्य निर्माण हो गया, बहुत बड़ा लाल आसमान, उसमें पॉइंट ऑफ लाइट, अनलिमिटेड लाइट। और जैसे ही मेरी यहां से दिल की आवाज निकली ओ शिव बाबा ऊपर बैठे क्या कर रहे हो, आ जाओ ना नीचे, वैसे ही लगा उनकी किरणों से एक आवाज आई बेटा आ रहा हूं। और मैंने फील किया, अंदर से विजन क्रिएट किया, खुद भी क्रिएट कर रही थी कि वो महाज्योति अपने किरणें फैलाते उस परम धाम के लाल आसमान से नीचे उतर रहे हैं, नीले आसमान में आए, पूरे प्लेनेटोरियम से देख रहे। आवाज कहाँ से आई? अर्थ से आई। तो अर्थ की डायरेक्शन में आ रहे हैं, अर्थ पर आ गए तो देखने लगे आवाज कहाँ से आई? इंडिया से आई। तो इंडिया की ओर आने लगे, इंडिया में आ गए तो आवाज कहाँ से आई? प्रैक्टिकल बात सोच रही हूँ ना। तो इंडिया में आके कहाँ से आवाज आई? चंडीगढ़ से आई। चंडीगढ़ में आ गए, चंडीगढ़ में आके कौन से सेक्टर से आई, कौन से हाउस नंबर से आई? और जैसे मैं सारा जैसे विजन देख रही हूँ, वो ट्रेस कर रहे है मेरा घर, और मेरे घर के बाहर से उन्होंने हाउस नंबर देखा और अंदर आ गए जहां मैं बैठी हूँ। कहो शिव बाबा आप आ गए, आपको नमस्कार है। कितने तेजोमय हो, कितने ब्राइट हो, कैसी शांति फैला रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो, कैसे प्यार शावर कर रहे हो, कैसे शक्ति दे रहे हो। ओहो आपको देख के इतना सुख मिल रहा है, इतना मजा आ रहा है, दिल कर रहा है देखती रहूं देखती रहूं देखती रहूं, आपको नमस्कार है। मेरे आंसू बहते रहे, कब आधा घंटा गुजर गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। आधा घंटा मैं ऐसे बैठी रही बातें करती, और कब वो सीन गायब हो गया मुझे इन आंखों से कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो मेरी विजनरी आई उस चीज को कैच कर रही थी। फिर मुझे एक खतरा लगा, क्या कि मेरे गुरुजी नाराज होंगे, ये तुमने क्या किया, हमने तो कहा था ऐसे जपना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये तुमने क्या किया। मैं गुरुजी के पास गई, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। मैंने उनसे पूछा गुरुजी मैं रोज तो माला जपती थी पर आज मैंने ऐसे किया है, ठीक किया गलत किया? उन्होंने हमको इतना शाबाश दिया, बेटा हम भी यही चाहते थे, तुम वहां पहुंच गई हो। एक होता है शब्द, एक होता है सूरत। तो शब्द टाइम पास है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे बच्चे को खेलने को खिलौना दे देते हैं, शरारत नहीं करे तो हम नाम शब्द दे देते हैं, लेकिन हमारा भाव यही होता है कि इस शब्द से आप सूरत तक पहुंच जाओ, उसका विजन क्रिएट करो और उस मिलन की फीलिंग करो, तो बेटा तुमने वो कैच किया है, इसलिए तुम इस राह पर चलो। तो ये रॉन्ग नहीं होता है, सिर्फ शब्दों को इलेबोरेट करके उसमें जीना, उसी को मंत्र कहते हैं। तो मंत्र होता है जो मन को त्राण दे, मन को आराम दे। एक और बात की सावधानी रखनी होती है कि जब जब हम मेडिटेट करें, राज योग का अभ्यास करें, थॉट्स की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि नई प्रैक्टिस है। नई प्रैक्टिस होने करके फास्ट सोचेंगे तो विजन मिस कर देंगे और कंसंट्रेशन मिस हो जाएगा और नींद में चले जाएंगे। आज सुबह भी आए बहुत भाई बहने, वो तो चलो सुबह उठने की आदत नहीं है, तो नींद साथ में अपना स्थान ले लेती है, क्योंकि राजयोग भी शांति देता है और नींद भी शांति देती है। कोई कोई को 20-20 साल की इंसोमनिया की डिजीज होती है और राजयोग मेडिटेशन सीखते ही ठीक हो जाती है, रियली ठीक होती है, स्लीपिंग पिल्स छूट जाती है, क्योंकि आपका सारा मेटाबॉलिक सिस्टम शांत होता है, सारा सिस्टम टोटल। पर हम धीरे धीरे ये प्रैक्टिस किया करते हैं कि अलर्ट शांति की तरफ जाए, तो वो अलर्ट शांति होती है जब विजन ठीक कैच होता है। अगर प्रॉपर कैच नहीं हो रहा, आज नहीं होगा तो थोड़े समय में हो जाएगा। अब आपको मेडिटेशन की टेक्निक बताई है, परंतु टिकट नहीं पकड़ा दी है कॉन्सेंट्रेशन की। आज आपने सुना, उसमें से कुछ समझा, कुछ समझने से मिस हुआ, और अभी आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस कराए और आपकी टिकट कट जाए एकदम लाइट लाइट लाइट, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई मिरेकल का इंतजार मत करना, ये स्टेडी प्रैक्टिस है, करते 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 होगी, और जब होगी परमानेंट हो जाएगी। जहाँ चमत्कार होता है वो टेम्परेरी होता है, कि सिर पे हाथ रख दो, लाइट दिख जाए और कनेक्शन हो जाए, तो हाथ हटाते ही वो चला भी जाएगा। तो ये है एम्पावरमेंट, एक ट्रेनिंग पीरियड है आपका, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आज थोड़ी कंसंट्रेशन होगी, फिर थोड़ी बढ़ेगी, फिर और फिर और, फिर आपको व्यवहार में इसको यूज करना सिखाएंगे, फिर इससे पावर्स लेना सिखाएंगे, फिर इससे कैसे बुराइयां ठीक होती है, क्रोध समाप्त होता है, टेंशन समाप्त होती है, इससे कैसे अपने काम बेटर किए जाते हैं, वो सारी स्टडी ट्रेनिंग है एक, जो साथ साथ चलती रहती है। तो अभी तो हम इतना समझे हैं, बहुत इनिशियल लेवल आपको समझाया है कि 4 स्टेप्स में पहले अपने को शरीर से अलग आत्मा समझना है, फिर निराकार परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें अपना रिश्तेदार मानते और फील करते हुए दिल से प्यार भरी बातें किया करें। ठीक है, इतना क्लियर होता है? इसमें कोई क्वेश्चन है? इतनी सी बात में अभी, अदरवाइज तो राजयोग PhD सब्जेक्ट है, पूरे लाइफ के साथ इसकी प्रैक्टिस चलती रहती है, पर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इनिशियल लेवल पे थोड़े मोटे रूप में भी करने लगते हैं ना, जो मैंने आपको कल बताया था, 7 दिन में रिजल्ट आ गया, मेरा क्रोध इतना फर्क पड़ गया, मुझे लगा पूरा जीतने में तो बहुत टाइम लगा, लेकिन लोगों को महसूस होने लगा ये ठंडी हो गई है। तो अभी चलिए हम कुछ मिनट अपने मन को एकाग्र करें। इसमें पोस्चर भी इम्पोर्टेंट रहता है, हम अपनी कमर को सीधा रखें, क्योंकि बैकबोन सीधी होने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक सप्लाई होता है और ब्रेन को जाने से फ्रेशनेस बनी रहती है। दोनों हाथ हम ऐसे कर लिया करते हैं ताकि एनर्जी का सर्किट बन जाए। ऐसे के बजाय ऐसे करना बेटर होता है, इजी रहता है। और उसको यहाँ रख लेते हैं, कमर और गर्दन सीधी कर लेते हैं, आंखों को प्रेफरेबली खुला रखते हैं ताकि जो प्रैक्टिस हम बैठ करके कर रहे हैं वो प्रैक्टिस हम कर्म में भी कर सके। आंख बंद करके करेंगे तो कर्म करते प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं नया नया कोई आंखें खोल के प्रैक्टिस करने लगता है तो उनको टफ लगता है, कई बार लगता है मन भटक रहा है। आंखें भटकने का कारण लगभग नहीं है, मन ने अगर भटकना है तो बंद आंखों में भी बहुत अच्छा भटक लेता है। और एकाग्र है किसी अपनी ही बात पर तो कोई आगे से चला भी गया तो दिखाई भी नहीं देता। तो ये विषय अंदर का है लेकिन प्रैक्टिस के बाद पकड़ में आता है। तो अभी पहले आप आंखें खोल करके ही बैठिएगा, इसमें सुस्ती आने का चांस नहीं रहता है। बाद में जब आप घरों में प्रैक्टिस करें तो डबल कर लें, पहले आंखें खोल के बैठें, फिर अगर बहुत ही ऐसा लग रहा नहीं हो रहा तो धीरे धीरे बंद करके फिर खोल के भी करें। डबल करते करते आदत पड़ जाती है, हम खोल के भी कर सकते हैं। तो अभी आंखें खोल कर चाहे तो यहाँ अगर पॉइंट ऑफ लाइट का दे सकते उपराज, तो यहाँ अपनी आंखें टिका सकते हैं। सिर्फ टिकाना ही मेडिटेशन नहीं है लेकिन मन को साथ में चलाना है। गहरा लंबा सांस लें, कमर सीधी का ध्यान रखें और गहरा लंबा सांस लेते माथे पर स्टार फील करते जाएं। शरीर को चुस्त रखें, माथे पर स्टार देखते उसकी लाइट फैलती देखते रहे। अपने आप को, मैं एक शांत आत्मा हूं। मस्तक के बीच एक स्टार की तरह चमक रही हूं। पूरे शरीर से एनर्जी को समेटते पैरों से, लेग्स से, बाजू स्टमक हार्ट से समेटते एनर्जी का सोर्स फोरहेड पर फील करें। एक डिवाइन स्टार जिसमें से लाइट निकल रही है, जैसे कि माथे पर किसी ने सफेद तिलक लगाया हो, उसमें से निकलती लाइट पूरे ब्रेन में जा रही है, फेस में आ रही है, बाजुओं में गई, पेट से लेग्स में चली गई, शरीर के रोम रोम से बाहर निकल रही है। ले चलेंगे अपने को ग्लोब के ऊपर, फील करें, दृश्य बनाएं, पूरी धरती बहुत बड़ा गोला, मेरे नीचे अपने गोज के ऊपर खड़ा देखें, माथे में स्टार, शरीर में फैलती शांत लाइट, रोम रोम से निकल रही है, मेरी नजरें ऊपर की ओर हैं, मेरे परम पिता परमात्मा की ओर, मेरी अंतर की आंख देखती है ग्लोब से ऊपर ब्लू स्काई को, सन मून एंड स्टार्स को, बुद्धि की आंख नीला आसमान क्रॉस करती है, उसे ऊपर एक रेड गोल्डन स्काई, उसमें जगमगा रही है परमात्मा की ज्योति। अंतर की आंख से ध्यान से उनकी ओर देखते हुए बात करें, ओ मेरे प्यारे शिव बाबा परम पिता परमात्मा, मैं आपका बच्चा आपको देख रहा हूँ, आप मेरे पिता हैं, शांति सुख के भंडार हैं, जो आपका सुमेरा फील करो, मेरे बाबा मुझ पर शांति और सुख की बरसात कर रहे हैं, शांति का शावर ऊपर से उतरा ग्लोब पर जहाँ आप खड़े हैं, आप पर शावर आ रहा है, आप उस शावर में अपने आप को समाया महसूस करते हो, माथे वाले स्टार से शांति की फीलिंग रेडिएट हो रही है, जैसे कि मेरे परम पिता शिव बाबा बिल्कुल मेरे सामने आ गए हैं, उनकी लाइट मुझ पर उतरती हुई कुछ बोल रही है, ओ मेरे बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, शांति सुख का सागर हूँ, जो मेरा सो तुम्हारा, बच्चे तुम चिंता मत करना, जहां मुझे याद करोगे वहीं दौड़ा चलाऊंगा अपनी सब शक्तियां तुम्हें प्रदान करता हूं, फील करो सर्वशक्तिमान से उतरी शक्तियां मुझ में समा रही है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, सुखी आत्मा हूं, अपने को वापस यहीं कुर्सी पर फील करें, माथे में शांत सुखी शक्तिशाली स्टार, और अपने से थोड़ा ही ऊपर अंदर की आंख देख रही है महाज्योति बिंदु सर्वशक्तिमान शिव बाबा को, और उनसे बरसते किरणों को, प्रकाश बरसने दे, अंदर समाने दे, ओम शांति।